नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार, आर्थिक सहयोग और आगामी उच्च स्तरीय बैठकों पर चर्चा हुई। डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध लगातार सुदृढ़ हुए हैं।
इकोनॉमिक कोऑपरेशन,
हमारा आर्थिक सहयोग, व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक, परमाणु ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में लगातार मजबूत हुआ है। मुझे लगता है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आपसे मिलने को उत्सुक हैं। दोनों देशों के बीच सहयोग की एक मजबूत तस्वीर हमारे सामने है, जिसे हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं।
स्ट्रॉन्ग पिक्चर ऑफ कोऑपरेशन टू प्रेजेंट।
राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को उर्वरक की आपूर्ति बढ़ाने की पेशकश की। उन्होंने कहा कि रूस भारतीय किसानों और कृषि क्षेत्र में सहायता के लिए कदम उठा रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने की इच्छुक कंपनियों की समस्याओं के समाधान के लिए अगले 2 महीनों में वर्तमान नियमों में संशोधन करेगा और नए नियम बनाएगा। जापान की राजधानी टोक्यो में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने 2 बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। भारत जापान आर्थिक संबंधों पर श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक हैं।
We are a young country.
भारत एक युवा देश है। आज हमारी अर्थव्यवस्था $4 ट्रिलियन की है और 2047 तक इसके $30 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। जापान के पास बेहतरीन तकनीक और कारोबारी अनुभव है, लेकिन वहाँ पर्याप्त लोग और बड़ा बाजार नहीं है। ऐसे में भारत एक बेहतर साझेदार बन सकता है, क्योंकि हमारे पास बड़ा घरेलू बाजार और बड़े स्तर पर उत्पादन की क्षमता है।
With a large domestic market.
गृह मंत्री अमित शाह ने सभी सुरक्षा एजेंसियों को घुसपैठ के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2026 का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि सुरक्षा से जुड़ी जानकारी का एआई के जरिए विश्लेषण किया जाए, ताकि देश की सुरक्षा चुनौतियों से बेहतर तरीके से निपटा जा सके। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। वे कल चीन की राजधानी पेइचिंग पहुंचे थे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने नई दिल्ली में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री जोशी ने बताया कि बैठक में CBSE की शैक्षणिक परीक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की प्राथमिकताओं की समीक्षा की गई। रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि भारत को वर्ष 2040 तक रसायन क्षेत्र को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य पर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए लगातार निवेश, तकनीकी विकास और घरेलू विनिर्माण क्षमता को मजबूत करना जरूरी है। भारतीय चीनी और जैव ऊर्जा उत्पादक संघ के महानिदेशक दीपक बल्लानी ने कहा है कि देश में चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि घबराहट और सट्टेबाजी में कमी के साथ ही चीनी की कीमतों में कमी आने की संभावना है। उन्होंने कहा कि पिछले 20 दिनों में चीनी की कीमतों में वृद्धि सट्टेबाजी और घबराहट के कारण हुई है। एम्स्टरडैम में खेले गए हॉकी विश्व कप के मैच में भारतीय पुरुष टीम को अर्जेंटीना से 3-5 से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ही भारत सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गया है। भारतीय टीम 7वें स्थान के लिए प्लेऑफ में 28 अगस्त को बेल्जियम से खेलेगी। कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की। जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 8 रन बना लिए थे। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।